ओम नमो भगवते
वासुदेवाय।
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। भक्ति वेदांत आय हॉस्पिटल बरसाना की भूमि पर आप सबका स्वागत है। ये बड़ी अद्भुत भूमि है और बहुत सालों के प्रयास से प्राप्त हुई है। इस जमीन का इतिहास बताने के पहले हम उस परिवार का इतिहास आपको बताएंगे जहां पर हम जाने वाले रात को भोजन करने के लिए। जब हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज 1971 में आए थे यहाँ पर, तो पहले वृंदावन में रहे, उसके बाद में घनश्याम बाबा के साथ उनका संग हुआ। कितने लोगों ने जर्नी होम किताब पढ़ी है? हाँ, बहुत लोगों ने पढ़ी यहाँ पर। तो उसमें घनश्याम दास बाबा जी महाराज का संग होने के बाद में घनश्याम दास जी को छोड़ते समय उन्होंने बताया था उनको कि आप बरसाने जाओ, वहाँ पर एक साधु का संग करो, फिर आपको बहुत अद्भुत साक्षात्कार की प्राप्ति होगी। तो महाराज सभी बालक थे, युवा अवस्था में थे, चल के चल के आए और पहाड़ चढ़कर मान मंदिर की ओर गए। और मानदंड मंदिर उस समय डाकुओं का अड्डा था, डाकू लोग अपना चोरी किया हुआ माल जो है वहाँ पर रखते थे। तो वहाँ पर रमेश बाबा जी निवास करते थे पहले, मतलब उसके बाद में। तो बहुत लंबा इतिहास है, आप किताब पढ़िए। जैसे बाबा जी महाराज बता रहे थे कि वो ऊपर कुछ पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो नीचे जाकर पानी उठाकर बाल्टी में लेके आना पड़ता था, हैंडपम्प भी नहीं था। तो उस समय पहाड़ पर बाबा जी का निवास था और सखी शरण बाबा भी निवास करते थे उनके साथ। और नीचे जहाँ पर वो परिवार रहता है उसके पास भी, उनके पास भी महाराज जी आया करते थे। और उस समय अभी जो 70 साल के हो गए वो सभी बहुत छोटे उम्र के थे, सब लोग बहुत छोटी उम्र में थे। तो उस समय उनके घर में, अभी देखिए उनके घर में उनके पिताजी थे, माताजी थे और दो कन्याएं और दो पुत्र थे उनको। तो एक कन्या का विवाह हुआ और कुछ गड़बड़ होके वापस आ गई और दूसरी कन्या ने विवाह नहीं किया। इसके पीछे भी एक बड़ी बात है कि वो जो घर है उसमें कई सालों से, मतलब अभी हम ही आके अभी 31 साल हो गए, तो उसके पहले कई साल जब महाराज जी आते थे तो 71 39 प्लस 16 कितने होते हैं, 55 ईयर्स, उसके पहले से वहां पर लोगों को भोजन वितरित होता था। और हम लोग कितनी भी कोशिश करेंगे ना, हमारी संस्था कितनी भी बड़ी हो जाएगी, फिर भी वहां पर जो फूड फॉर लाइफ होता है उसके हम लोग तुलना नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। कितनी भी योजना बनाएंगे, कितना बजट बनाएंगे, कितना भी फंड रेजिंग करेंगे, लेकिन वो जो भाव वहां का है उसको हम लोग मैच नहीं कर सकते। वहां पर कभी भी आप जाओ आपके लिए प्रसाद उपलब्ध है, कभी भी जाओ, चाहे पहचान के हो ना हो, बैठ जाएंगे तो प्रसाद मिलेगा। उत्सव के समय जब राधाष्टमी होली होती है तो 24 घंटे प्रसाद मिलता है, दिन रात पूड़ी सब्जी हलवा या कभी खीर। और वो तो मेहमानों की बात है, जो आने जाने वाले लोग हैं जो यात्रा में आते रहते हैं वो खाते हैं, लेकिन ऐसे अद्भुत चीज़ है कि उनके घर में रोज 400 लोग का प्रसाद बनता है, क्योंकि 250 तो विद्यार्थी हैं जो गुरुकुल में बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं। एक बच्चियों का, लड़कियों का गुरुकुल है, उसमें कोई 150 लड़कियां पढ़ती हैं, और एक बच्चों का मतलब क्या कहते हैं उसको, हाँ मेल मेल चाइल्ड, लड़कों का गुरुकुल है, उसमें कुछ 125-150 बच्चे पढ़ते हैं, तो वो सब लोग उधर ही घर में प्रसाद पाते हैं उनके। और मान मंदिर में जितने साधु रहते हैं, जो आते हैं जाते हैं, कभी रहते हैं कभी जाते हैं निकल के, लेकिन कुछ निवासी हैं ऐसे, पहले जब मैं आया था 70 थे, अभी वो भी शायद 150 हो गए हैं, पता नहीं। तो कुल मिलके 350-400 लोगों का इंतज़ाम रोज उस घर में होता है, सुबह एक बार फुल मील होता है और शाम को एक बार फुल मील होता है। इसलिए हमारा प्रसाद का इंतज़ाम 9 बजे क्यों है, क्योंकि उनके डिनर का टाइम 7 से 9 है। एक बार 150 लोग बैठते हैं तो 2-3 पंगत हो जाती है। आज जल्दी जल्दी करेंगे, हमने कहा है 8:30 तक करेंगे। और इसके बावजूद भी अगर हम कहेंगे कि हम 300 लोग को लेके आ रहे हैं, बोला आ जाओ, हो जाएगा, जो है वो हो जाएगा। हम लोग अगर में 4 मेहमान होंगे तो 5वां आएगा तो हम कितनी तकलीफ होती है, बोले आज नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। इसका कारण यह है कि वो सबसे पहले हृदय में जगह होनी चाहिए, फिर बाहर जगह हो जाती है। हृदय में जगह नहीं है तो बाहर कैसे होगी? चौथे आदमी को, 4 आदमी को बुलाने के बाद 5वें आदमी को अगर भोजन खिलाना है तो हृदय में जगह नहीं है उसको खिलाने के लिए, तो बर्तन में कैसे आएगी जगह, भोजन कैसे आएगा? तो सबसे बड़ी बात भाव की है। भाव यह है कि सब जो भी आएगा उसको प्रसाद मिलना चाहिए। और मैंने वो दिन देखे हैं जिसमें कुछ साधन भी नहीं था उनके पास, जैसे खंडर जैसा था पूरा घर, गरीब थे एकदम, तब भी उनका यही भाव था। और आज राधा रानी की कृपा से है, अच्छा विस्तार हो रहा है, धन भी आ रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन भाव में अंतर नहीं आया। ऐसा नहीं कि वैभव आने के बाद में गर्व हुआ फिर सबको संकुचित हो गए, ऐसा नहीं। जितना वैभव आता गया उतना सेवा बढ़ती गई। आप लोगों को मैं एक विशेष प्राइवेट बात बताना चाहता हूँ, वहां जाकर चर्चा मत करना। उन लड़कियों ने विवाह नहीं किया क्योंकि उनको ये सेवा छोड़कर पराए घर जाना नहीं था। ये उनका क्या कहते हैं, अंदर का भाव है कि अगर ये सेवा छोड़ के शादी करके जाएंगे तो ये सेवा कैसे कौन करेगा। तो चूंकि उन्होंने ये किया तो वो कुंवारी रही, तो कुंवारी फिर वो अभी अभी तो उनकी उम्र खुद की अभी 60 साल तक आ गई है। तो जब वो जवान थी तभी गांव के लोग ताने मारते थे कि इनके पास इतने लोग आते हैं तो इनका वेश्या व्यवसाय है, इसलिए उन्होंने शादी नहीं किया है, ऐसे बोलते थे। इतने ताने, इतने गलत चीज़ों का उन्होंने सामना किया है, क्योंकि तो भगवान की सेवा करना कोई आसान काम नहीं है, कोई खेल नहीं है। हाँ तो हम लोग अच्छा अच्छा प्रवचन दे सकते हैं लेकिन उसको निभाना बहुत कठिन है। तो ऐसे ऐसे कर्रे कर्रे वचनों का उन्होंने सामना किया है, निंदाओं का सामना किया है, लेकिन निरंतर उन्होंने भगवान के भक्तों की सेवा की है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि वो चित्रा सखी का घर है इसलिए इतनी सेवा चल रही है उसके अंदर। और महाराज हमारे रमेश बाबा जी महाराज तो विरक्त हैं, वो हमेशा विरक्त रहने का ही प्रचार करते हैं और करते थे, तो सब घर में विरक्त हैं। जो बड़े लड़के हैं उनके, उनका नाम है पंडित रामजीलाल शर्मा, वो कुछ है होंगे आज 70 साल के होंगे, भागवताचार्य हैं। और सबसे पहले भागवताचार्य मैंने देखे जो पूरी तरह निरपेक्ष, आजकल भागवत सप्ताह दो धंधा बन गया है, एक आमदनी का साधन बन गया है, उसको सोच कर ही लोगों को पढ़ाते हैं बच्चों को कि आगे जाकर भागवताचार्य बनेगा तो बहुत धन कमाएगा। लेकिन शास्त्र लिखता है कि भागवत कहकर कभी पैसा नहीं कमाना चाहिए, कीर्तन करके पैसा नहीं कमाना चाहिए, भागवत बोलकर पैसा नहीं कमाना चाहिए। तो ये भाव बाबा ने उनके मन में एकदम ठोस के रूप में भर दिया। तो ये जगह जगह अभी तो विदेश में इनका प्रचार चलता है, 177 देश में इनकी कथा लाइव चली जाती है इंटरनेट के माध्यम से, और इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप सब जगह पर इनका भागवत सप्ताह चलते हैं। तो पंडित जी अकेले पहले करते थे, भारत भर में घूमते थे, फिर एक समय पर विदेश में उनको चालू हो गया, फिर विदेश जाने लगे। अभी दो बहनों ने शादी नहीं की, पंडित जी ने शादी नहीं की, एक भाई ने शादी की, वो थोड़े से अलग रहते हैं। आखिरी बचे हमारे लाला जी जो अभी हमारे होस्ट हैं आज के, लाला जी यानी देव कृष्ण शर्मा जी। तो लाला जी को विवाह करने की इच्छा थी, वो विरक्त होने के मूड में नहीं थे, तो उनके घर में उनकी बहुत निंदा की गई, ये शादी करना चाहता है, ये ऐसा है, पतित है, वैसा है, ये वो है। और लाला जी हमारे समवयस्क हैं, तो जब से हम यहाँ पर आए लाला जी हमारे अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, इतने अच्छे मित्र हैं कि हम लोग कई पता नहीं कितने दिन साथ में रहे हैं, इधर उनके घर पे रहे हैं। तो लाला जी ने विवाह किया, हाँ, तो वो उस विवाह की भी बहुत निंदा की गई, नहीं, करना है तो एकदम सिंपल करना है, कुछ बड़ा करना है, लाइट लगाना नहीं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे बहुत सारा उनका शादी में बातचीत हुई। लेकिन शादी हुई अभी उनको, एक दो दो लड़के दो लड़कियां हैं, नहीं दो दो लड़के, तीन लड़कियां और दो लड़के, ठीक है, पांच बच्चे हैं, उसमें से सारे भागवताचार्य हैं, बोलो, एवरीबडी इज भागवताचार्य। और जो आखिरी बच्चा है वो हमारे इस्कॉन गुरुकुल में पढ़ रहा है, और उसको वहां पर पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो अच्छा अंग्रेजी बोलेगा तो अंग्रेजी में भागवत कथा करेगा, इस भावना से उसको अभी सब हिंदी में कथा करते हैं। उसमें एक लड़की है, इसका नाम है मुरलिका शर्मा, वो सबसे बुद्धिमान, सबसे उन्नत, सबसे ज्ञानी पंडिता हैं वो, उनकी कथा सुन के शरीर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वो विदेश भर सब जगह पर उसको निमंत्रण है, यहाँ तक कि पंडित जी को भी उसने पीछे कर दिया है, पंडित जी के आगे चली गई वो, इतना, क्योंकि तो एक तो छोटी सी थी पहले वो, तो छोटी सी भागवत करती थी, जब वो 12 साल की थी, 13 साल की थी। अभी आपको पता होना चाहिए हमारे पास बहुत कन्याएं बैठी हैं, बहुत पर प्रभु जी बैठे हैं। भागवताचार्य बनने का मतलब क्या होता है कि भागवत का हर एक श्लोक संस्कृत व्याकरण के आधार पर उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके विद्यालय हैं बहुत, व्याकरण के विद्यालय हैं, फिर कई साल तक संस्कृत सीखना पड़ता है, व्याकरण सीखना पड़ता है, फिर भागवत जी का अध्ययन होता है, उसके छंद होते हैं, उसको गाने को सिखाते हैं, भागवत अलग अलग छंद में गाने को सिखाते हैं, फिर उसके बाद में आप शास्त्री बन जाते हैं। हमारा भक्ति शास्त्री जो अलग लेवल पे है, जो हमारे इस्कॉन में चलता है, वो कुछ खराब नहीं है, मैं इसको ऐसा नहीं कह रहा हूँ, हमारा भक्ति शास्त्री का कंसेप्ट जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे है, उनका शास्त्री का मतलब है कि भागवत जी में वो आचार्य बनता है। तो ये सारा पढ़ाई जो है उन्होंने, बाबा जी ने उनको खुद बैठकर कराया है। ये लड़कियां जो हैं वो धूप में भी 12-12 घंटे पढ़ती थी, एक रोटी खाती थी और पहाड़ चढ़कर दिन भर बाबा के साथ बैठकर भागवत का अध्ययन करती थी। अभी उसमें से मुरलिका शर्मा जो है, उसने बाबा के निर्देश में बैठकर ब्रज के विषय में, ब्रज मंडल परिक्रमा के विषय में पूरा किताब लिखी है। ब्रज जो है वो दो प्रकार का उसमें यात्रा होती है, एक होता है अंतर्वेदी, एक होती है बहिर्वेदी। बहिर्वेदी जो बॉर्डर बॉर्डर से होती है ऐसे ब्रज के पूरे, वो भी बहुत बढ़िया उसमें स्थान आते हैं। और एक अंतर्वेदी, जैसे कि अंदर आए आप, गोवर्धन का परिक्रमा किया, 7 मंदिर वृंदावन के देखे, कालिया घाट देखा, ऐसे अंतर्वेदी, और एक बॉर्डर से। तो अंतर्वेदी परिक्रमा की किताब अभी पब्लिश हो गई है, उसमें इतना नॉलेज है कि आप यकीन नहीं कर सकते। अभी बहिर्वेदी किताब का लेखन चालू है, वो भी मुरलिका शर्मा ही कर रही है। तो कहने का मतलब है कि विरक्त गृहस्थ हो या विरक्त, जीवन का उद्देश्य बदलता नहीं है, जीवन का उद्देश्य सेम रहता है। और वो उनमें उनमें से वो उनकी निंदा सहन करते करते एक गृहस्थ बन गया। कैसा गृहस्थ बन गया? 5 बच्चों को जन्म दिया, पांचों भगवताचार्य, ऐसी गृहस्थी होनी चाहिए, है ना? हमारी कोख से जो जन्म लेता है वो उसकी आखिरी कोख होनी चाहिए। जिस हमारे गर्भ से कोई जब बालक जन्म लेता है तो वो बालक और किसी माँ के गर्भ में जाना नहीं चाहिए, यह गृहस्थ आश्रम का ब्रीद होना चाहिए कि माई चाइल्ड शुड नेवर टेक बर्थ अगेन। तो ऐसी संतान, ऐसे ब्रजवासी है ये, उनका जो त्याग है आज भी, वो उनका निजी जीवन बहुत सिंपल है, उनके पास अब एक्सटेंशन हो गया है, उन गेस्ट रूम हो गया है, इधर बढ़ गया है, देखो मान मंदिर और ऊपर 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 जा रहा है देख रहा था यहां से, तो कुतुब मीनार की तरह हो गया वो भी तो वैभव है लेकिन इनका जीवन नहीं बदला। हाँ, तो ये सब तो जनरल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, लेकिन 1992 में जब हमने पहले आय काम किया यहाँ पर, तो आप तो भी, आप आज लोग सब लोग रंगीले आश्रम में रहते हैं, राधा माधव में रहते हैं, श्री जी प्रिया कुंज में रहते हैं, अच्छी अच्छी व्यवस्था में रहते हैं। पहला कैंप जो है हमारे 68 लोग आए थे, हमारे बालकृष्ण प्रभु की तरह, बालकृष्ण प्रभु पहले कैंप में थे। पहले कैंप में और कोई लोग थे क्या इनके अलावा? इस आप भी थे 92 में, नए नए भक्त बनकर आए थे, नई नई शादी और नए नए भक्त बनकर आए थे, श्यामा रानी माता जी। तो उस समय हमने उनके घर में ही डेरा जमाया था। पद्मावती माता जी थी ना, तो क्यों नहीं हाथ ऊपर करती है? दुख रहा है क्या हाथ आपका? थोड़ा मालिश करो हाथ को। पद्मावती माता जी भी थी। 68 लोग आए थे हम लोग केवल, और 185 ऑपरेशन किए थे। क्या बताऊं आपको, समझो मैं कहूं कि हम लोग चार लोग जरा पुणे से आ रहे हैं, 4 दिन रहना चाहते हैं, तो आप लोग बोलेंगे 2 दिन रुको, मैं बोल सोच के बताता हूँ आपको, है ना? तो आके कोई पति कहाँ सोएगा, पत्नी कहाँ सोएगी, बच्चे कहाँ सोएंगे, इनको कहाँ सुलाएंगे? हम लोग 68 लोग आ रहे हैं ऐसा बोला उनको। तो बोला आ जाओ, कोई बात नहीं। अपने घर में ही सबको आसरा दिया उन्होंने, 68 पीपल। और हमने टाट मंगवाई, टाट यानी गुणपाठ बना ना, गुणपाठ, वो टाट के घर बनाए हमने। टाट का दरवाजा, टाट की दीवारें, टाट का छत, बाथरूम भी टाट के बनाए। एक बीच में, 2 रूम के बीच में एक बाथरूम, उधर स्नान करना है, गर्म पानी पहुंचाना है और स्नान करना है, जहाँ नल की व्यवस्था है। और टाट के टॉयलेट बनवाए खेत में, लाइन से ऐसे मेल एंड फीमेल, बीच में पानी का स्टोर बनाया। और सभी ठंड में लोग जाते थे उसके अंदर और गड्ढे खोदे, नेचुरल टॉयलेट। और वो लाला जी हमारे इतने सेवक भाव में थे, अभी भी है, अभी भी पूरा उनकी यात्रा चलती है। 15,000 लोग चलते हैं उस यात्रा में, हमारे यात्रा में 5,000 चलते, तो दुनिया उनको बोलते 5,000 लोगों को ले जा रहे हैं। इनकी यात्रा में 15,000 लोग वॉकिंग यात्रा करते हैं, 40 दिन के लिए करते हैं। उसका सारा प्रसाद जो है ना, 15,000 लोग का इनके घर से जाता है। कहीं पर भी कभी कभी यात्रा का स्थान 70 किलोमीटर दूर है यहाँ से, 70 किलोमीटर्स दोनों तरफ है, 84 कोस की यात्रा में। हर दिन का 2 भोजन 15,000 लोग का इनके घर से जाता है। बोलो आप, कोई कर सकता है ऐसे? विचार कर सकता कोई ऐसे कि हम लोग ऐसा करेंगे? विचार करना दूर, ये तो एक्टिविटी में दिखाई पड़ रहा है। तो सारा चीज हमारे लाला जी संभालते हैं, पूरा उसका खरीदी, कुकिंग, डिस्पैच, किस स्थान पे पहुंचाना है, उसका डिलीवरी, फिर आके बर्तन मांजना, फिर वापस अनाज खरीदना, फिर पकाना, फिर भेजना। कितनी कठिनाइयां, कभी बारिश होती है, कभी तूफान आता है, कभी आंधी आती है, पता नहीं क्या क्या होता है। वो 40 दिन तक इनके घर से होता है। और साल भर तो 400 लोगों का भोजन तो बनते रहता है। ऐसे यात्राएं हमारे जैसे आते रहते हैं, हमारे मंदिर में फोन आता है कि प्रभु जी हमको बरसाने में हम यात्रा लेके जा रहे हैं, प्रसाद का इंतजाम करो। हम फोन करते हैं, फिर उनका इंतजाम भी हो जाता है। फिर राधाष्टमी है, होली है, हरियाली तीज है, कौन से बहुत सारे उत्सव हैं, सब में व्यवस्था हो जाती है। तो मैं ये कह रहा था कि रात को ये 12 बजे हमने पहला कैंप लगाया था ना उनके घर पे, तो हमको इतना एटमॉस्फेयर का नॉलेज नहीं था, तो हमने जनवरी में कैंप लगाया था। अभी मैं इस साल जनवरी में आया था, मेरा ड्यूटी है हॉस्पिस पर वृंदावन में, तो मैं आया था। तो केवल 0.5 टेम्परेचर था, बहुत कम। केवल 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड डे 1 था, थर्ड डे 3 हो गया, और आने के समय फिर 7 हो गया, अभी 10 चल रहा है। तो हमने जनवरी में कैंप लगाया था, कुछ 12-13 तारीख को कैंप शुरू किया था, 15 दिन चला। उस समय तो 4 दिन की ओपीडी, 4 दिन का ऑपरेटिव, और कंपलसरी 4 दिन का पोस्ट ऑपरेटिव हुआ करता था। अलग सिस्टम थी उस समय गवर्नमेंट की। तो इतने सारे दिन हमने वहां पर डेरा लगाया था। इतने ठंड में ना पानी गर्म होता ही नहीं था। कितना भी उसको कोयला जलाओ, लकड़ी जलाओ, होता ही नहीं था पानी गर्म। तो ये लोग इतने सेवा भावी थे कि रात को 12 बजे चूल्हा जलाकर बड़े बड़े भगवान में पानी रखते थे। इतना बड़ा कढ़ाई और इतना बड़ा भगोना में पानी डाल के उसको गर्म करके छोड़ते थे, मतलब थोड़ा सा, ताकि सुबह जो है वो बर्फ जैसा पानी गर्म करने का मौका नहीं मिले ऐसे। और सुबह दोबारा दोबारा चला जाते 3 बजे उठकर, ताकि जो 4 बजे उठकर 5 की ड्यूटी में जाते थे उनको पानी मिलता था। और सब लोगों को पानी बाल्टी में, यहाँ लेडीज के लिए, यहाँ मेन के लिए, सब लोगों को पानी पहुँचाते थे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 15 दिन 20 दिन तक किया उन्होंने। और सबका भोजन भी उनके घर पे ही था। उनके घर में जितनी जगह थी, हम लोग क्या बोलते मराठी में, खुपचा, मतलब थोड़ी सी जगह होती ना घुसने के लिए, सब जगह आदमी लोग थे। कहीं भी देखो, कौन से भी कोने में, गली में, गलियारे में, किधर रास्ते में, बीच में, सब जगह आदमी ही आदमी थे, आदमी और औरत। पहले माले पे भी थे, सब जगह पर, जहां जहां जगह है सबको टाट के घर बनाए थे। जगह ही नहीं बची थी, उसमें भोजन भी बनाते थे और खिलाते थे सबको। तो यमुना मैया थी उनकी माता, इतनी अद्भुत संत थी वो। इतनी अद्भुत संत थी, पता नहीं कब सोती थी वो, सबसे पहले उठती थी वो, हम सब लोग उठने के पहले, हमको तो 4 बजे उठना था, उसके पहले वो जगी रहती थी, देख रही थी पानी गर्म हो रहा है कि नहीं, और सब लोगों को पानी दे के स्नान करा के नाश्ता करा के भेजती थी। फिर रात को आप देखेंगे तो रात को सबको पूछ पूछ के कंबल दे रही, किसी को कंबल मिला, आपको कंबल नहीं मिला, ठंड लग रही है और एक कंबल लो, सब लोगों को जितने लोग आए सबको पर्सनल जाके माता जी उनको प्रभु जी उनको मिलकर कंबल देती थी। उसके बाद सबको दूध देती थी, सबको दूध पहुंचाती थी, आपको दूध मिला, आपको दूध मिला और पियो, ऐसे ऐसा नहीं इतना कितना लीटर दूध मंगाया है कैसे चलेगा, अरे बाप रे इतना लीटर दूध हमारा मुंबई का बोल रहा हूँ मैं, मुंबई का लोग गणित करते रहते हैं मन में, केवल कैलकुलेशन करते रहते हैं, भगवान का चिंतन ज़्यादा कम और कैलकुलेशन ज़्यादा करते रहते हैं। इनके मन में इनको जगाओ, राधे राधे जय श्री राधे, तो सब लोगों को प्रेम से दूध पिलाते थे, खुद की भी गौएं थी, बाहर से भी दूध मंगाते थे, और पता नहीं 11:30-12 बजे कब सोती थी, आई डोंट नो, क्योंकि मैं भी लोगों की व्यवस्था में उनके साथ जगता था और मुझे भी दूध और कंबल सुला के फिर पता नहीं कब सोती थी वो, और फिर उठती थी दिन भर, और फिर अपना इतना बड़ा भागवत खोल के बैठती थी, भागवत का अध्ययन रोज करती थी, इतना सेवा भाव, इतना प्रेम, इतनी करुणा मैंने कभी देखी नहीं आज तक। तो यमुना मैया हमारे एक अद्भुत ब्रजवासियों के लिस्ट में एक माता है, और इतनी श्रद्धा थी उनको, उनके जीवन में भी यही था, केवल 2 साधु जानती थी वो, श्रद्धा उनकी, ये रमेश बाबा जी और राधानाथ स्वामी महाराज। जब उनका अंतिम समय आया तो उनको ना बहुत भयंकर रोग हो गया, उसको कहते हैं एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस, मतलब सारी आपकी खाल उतर जाती है, कंप्लीट ऑल स्किन गेट्स लॉस्ट, पूरा सब, जैसे स्किन उतरने के बाद क्या दिखता है आपको, ऐसे पूरा शरीर हो गया उनका, जहाँ देखे वहाँ पर चमड़ी उनकी गिर जाती थी, तो उसके बाद ठंड लगती है बहुत, गर्मी भी ठंड लगती है, जहाँ बैठ सोएगी वहाँ पर पूरी इसका चर्म जो है ऐसा पूरा पाउडर के रूप में गिरता था, बहुत कष्ट भोगा उन्होंने, बहुत कष्ट भोगा, लेकिन फिर भी उनका भजन, उनकी श्रद्धा और उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। उसमें भी हम आते थे मिलने के लिए तो पूछते थे आपने रोटी पाया, ठीक हो, कुछ चाहिए आपको बता दो, कितना सेवा भाव, हर व्यक्ति को कभी भी आप आएंगे रोटी पाओ बैठो प्रसाद पाओ, ये उनका पहला मंत्र है, आप आने के बाद सबसे पहले आते ही बोलो बैठो। तो अभी आपको मैं कहानी बताता हूँ, हम लोग 1986 में सबसे महाराज की जो पहली यात्रा थी ना उसमें आए थे हम लोग, तभी हम लोग बहुत 20-22 साल के थे, और केवल 22 लोग थे उस यात्रा में, आज का रिकॉर्ड है वो, महाराज की यात्रा में 22 लोग जाएंगे तो आप बोलेंगे वाह क्या बात है, हर जगह महाराज जमीन पर बैठकर कथा करते थे। तो वो 22 लोग की यात्रा लेकर हम लोग उनके घर पर जब पहुंचे थे तो कोई फोन वोन नहीं था उस समय, ना उनके घर में लैंडलाइन था, ना मोबाइल, ना कुछ नहीं था, तो ऐसे टपक गए हम लोग वहां पर, 4 बजे पहुंच गए हम लोग वहां पर। तो 4 बजे क्या होता ना, वैसे ट्रांजिट टाइम, मतलब सुबह का जो उनका सुबह का जो प्रसाद वितरण है वो सब होकर बर्तन मांझ कर उल्टे करके एक कुछ समय विश्राम करते हैं आधा पौना घंटा, फिर वापस शाम की तैयारी शुरू होती है। तो हम लोग उसी टाइम पे वहाँ पहुँच गए, तो विश्राम कर रहे थे सब लोग, साफ सफाई करके बर्तन उल्टे रखे थे और सो रहे थे सब लोग। तो जब पहुँच गए ना तो कुछ नहीं था वहाँ पर ना, लेकिन लक्ष्मी देवी है हमारी, लच्छो दीदी कहते हैं हम उसको, तुरंत चूल्हे पर बैठ गई, ऐसे फटाफट मशीन की तरह रोटियाँ निकलने लगी, और क्या करें सब्जी तो है नहीं, सब्जी बनने को टाइम लगेगा, तो सारे डब्बे उतार दिए, 5 प्रकार के अचार थे उसके अंदर, गुड़ का डब्बा खोला, गुड़ दिया उसके साथ में, हाँ कुछ मिठाई लड्डू थे वो लड्डू दिए, और इतना सब लोगों को भर पेट प्रसाद खिलाया, लोग दंग रह गए, ऐसे अचानक आने के बाद में 22 लोग को पेट भर प्रसाद कौन खिला सकता है, के लिए भाव चाहिए। अभी वो आज तक वो सीन याद है उनके घर का, जब हम पहले उनके घर में पहुंचे थे, अब मैं दिखाऊंगा, हम लोग जहां बैठकर वो आपको भागवती बांटेंगे ना उसी जगह पर हम लोग ने बैठ के प्रसाद पाया था। तेनी अंतिम समय पर इतनी जर्जर हो गई थी कि उनको हिलने को भी नहीं हो रहा था, मतलब हाथ भी ऐसे लोग उठा कर रखते थे यहाँ वहाँ उसको। तो 2 जनवरी को उस साल हम लोग पहुँचे वहाँ पर उनको मिलने के लिए, तो जैसे राधानाथ महाराज जी आए तो झट से उठ के बैठ गए अपने आप, पता नहीं कैसे शक्ति आ गई उसके अंदर। और महाराज जी ने उनसे बहुत प्रेम से बात किया। वो अंग्रेजी बोलते थे, मैं अनुवाद करता था, वो हिंदी बोलती थी, मैं अनुवाद करता था। लेकिन पुराने जमाने में मैं तो नहीं था ना उसमें उस सीन में मैं नहीं था, तो ये अंग्रेजी बोलते थे, वो हिंदी बोलते थे, और घंटों घंटों ऐसे ही बातें करते थे, हंसते रहते थे। वो हिंदी बोलेंगी ब्रजभाषा, वो भी हिंदी भी नहीं, वो आपको भी समझ में नहीं आएगी, ऐसे भाषा बोलेंगे, और वो अंग्रेजी भाषा बोलते थे, और वो हंसते थे जोर जोर से सब मिलकर। और मुझे गुरु महाराज बताते हैं कि आप अनुवाद करते हो, अच्छी बात है, लेकिन आप अनुवाद करने के बाद में जो पहला आनंद था वो खत्म हो गया जो पहले खुशी थी उसमें अनुवाद बिना, वो आनंद समाप्त हो गया ऐसे बोलते हैं उनको। क्योंकि हृदय की बात साथ होते ना, बात जो भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वो आत्मा से आत्मा बात करती है, वो लैंग्वेज शरीर उसके बीच में नहीं आता है। तो ऐसा उनका प्रेम था। वो महाराज जी उनके घर में भोजन करते थे, भिक्षा भी करते थे। तो महाराज जी को इन्होंने इतना प्रेम दिया है। अभी एक अद्भुत चीज़ होती है, जब महाराज जी वहाँ कभी पहुँचते हैं, तो 3 साल के बाद में एक दिन, तो मैंने कहा ना आपको कि ब्रजवासी की गालियाँ बकते हैं, तो इतना टोकते हैं महाराज को, इतना टोकते हैं, इतना बोलते हैं कि आप उसका अनुवाद करना भी मुश्किल होता है, और अनुवाद करने के बाद याद करना बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। तब मुझे रिकॉर्ड करना शुरू किया है, मैं रिकॉर्ड ऐसे ऑन रखता हूँ, फिर अनुवाद करते रहता हूँ, फिर उनका चलते रहता है नोक झोंक। उसको यहाँ की भाषा में क्या बोलते हैं, नोक झोंक, मतलब एक दूसरे को टोकते रहना। वो कुछ बोलेंगे, उसका जवाब देंगे, फिर उसका जवाब देंगे, फिर ये जवाब देंगे, फिर इस तरह से उनकी होती है। तो फिर महाराज जी जब पहुंचे, ठट से उठ के बैठी और बहुत प्रेम से संवाद हुआ उनका। और उसके कुछ ही दिन बाद वो गुजर गई, 2-3 दिन के बाद ही गुजर गई। तो उन्होंने एक जिद किया था कि उस साल में ना राधा गोपीनाथ मंदिर ने एक कैलेंडर निकाला था, राधा गोपीनाथ जी का हाफ हाफ फ्रेम का। और वो राधा गोपीनाथ का जो फोटो था, वो जो फोटो लिया गया था, वो राधा गोपीनाथ जी का श्रृंगार राधानाथ महाराज ने किया था, उसकी फोटो निकाल कर कैलेंडर बनवाया था। तो जब हम हमेशा कैलेंडर बना के उनको दाके देते थे, तो हमने इस साल बताया था कि ये जो राधा गोपीनाथ है, इनका राधा रानी का श्रृंगार राधानाथ महाराज ने किया है। तो वो उसने अपने कमरे में लगा के रखा था, और कहती थी मेरे सामने रखो उसको हमेशा। और आखिरी समय में उसी चित्रपट को देखते हुए शरीर छोड़ा उसने। और जब वो अंतिम समय आया, तो बाबा जी नीचे आए, और उन्होंने उस अवस्था में भी पूरी जागरूक थी वो, ऐसा नहीं कि बेहोश थी या कोमा में थी, बहुत सचेत थी, बिल्कुल अलर्ट, कंप्लीटली अलर्ट थी। कहती है कि मैं जा रही हूँ, मुझे बाबा के चरण का चरणामृत चाहिए। तो बाबा को बुलाया गया, बाबा नीचे आए, बड़े गहरे हृदय से आए, और उन्होंने बहुत संकोच से अपना पैर आगे किया, उसको अंगूठे का उन्होंने धोया उसको, और माता को पिलाया उसको, और उनको बाबा जी के गोद में रखा, और बाबा जी के गोद में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। इतनी महान वैष्णव थी वो, मैं उसका आपको एक्चुअली पूरा वर्णन नहीं कर सकता, इतना प्रेम था उसके अंदर, इतनी आदर आतिथ्य करने में इतनी कुशल थी वो, और इतना हृदय में उसका विशाल प्रेम था। ये मत समझना कि हमारे लिए करती थी, जितने भी लोग आते थे वो सबके लिए ऐसे करते थे, कोई भेदभाव नहीं उसमें। तो वो जमुना मैया की कथा है। फिर वो हमारे लाला जी ने तो हमको, उनका नया नया शादी हुआ था उस समय, हमारे कैंप के समय नई नई दुल्हन घर पर आई थी, तो वो भी उसी भाव में जुड़ गई। आज उनके विवाह को 34 साल हो गए, नहीं 24 साल हो गए, सॉरी कितने साल हो गए, 25 साल हो गए, 25 शायद। तो कहते हैं ना कि ये भाग्य होता है, कोई वैष्णव घर में विवाह होना, वैष्णव घर में विवाह होना बड़ी भाग्य की बात है। तो वो मध्य प्रदेश की खंडार प्रदेश की आई थी वहाँ से, लेकिन इतनी घुलमिल गई, उसी भाव को उन्होंने अपना लिया। इतने बिजी रहते थे हमारी सबकी देखभाल करने में, फिर भी सब लोग सवेरे हारमोनियम में बैठ के 15 मिनट भजन करते थे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे, ऐसे करके गाते थे हारमोनियम उनका, एकदम पुराना बाजा बोलते थे उसके, एकदम बहुत अजीब सी आवाज आती थी उसके अंदर उसमें गाए बातें थे बड़े प्रेम से। उनका एक नियम था कि रोज ठाकुर जी के लिए गाना है, बस। इतना अद्भुत। और उनके घर में जो ठाकुर जी के मंदिर है ना, उसके अंदर कई सारे लड्डू गोपाल जी हैं, कई सारे विग्रह हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, कई सारे राधा कृष्ण के विग्रह हैं, एक बड़े गिरिराज जी हैं वगैरह वगैरह। तो सारे अद्भुत तरीके से आए हैं, किसी किसी के सपने में आए, जो घर के एक व्यक्ति के सपने में आए कि मैं आ रहा हूं, और नेक्स्ट डे समबडी विल कम एंड गिव द डीडी टू देम, ऐसा है, ऐसे सब इकट्ठा हो गए वहां पर। हर एक ठाकुर जी ऐसे आए हैं। तो ये ऐसा अद्भुत परिवार जो है, इनका संग हमें इतने सालों से प्राप्त हुआ है, महाराज जी को प्राप्त हुआ है, उनके वजह से हमको प्राप्त हुआ है। तो आप लोगों भी उनके घर पे जाने वाले हो, उनका हृदय देखिए। जब हमने पहले यहाँ पर कैंप किया ना, तो एक तो घर पूरा दे दिया, हाँ, और सारा घर का जो भंडार है पूरा खोल दिया, जो ले लो जो आपके लिए चाहिए वो ले लो, खाना पीना रहना दूध जो भी है ले लो, सब पूरा प्राइवेसी खत्म हो गया उनका। उसके बाद में हमारे कैंप फिर अली जगह शिफ्ट हो गए, वहां पर ऑपरेशन, वहां पर ऐसे बहुत जगह हमने यहाँ पर यात्रा किया है कि राजभवन, मोदी भवन, अलग अलग जगह भी पेशेंट को रखा था कभी कभी। तो एक दिन क्या हो गया कि हम लोग के पेशेंट को हम लोग ब्लैंकेट देते ना डिस्चार्ज में, तो एक साल सोचा कि हम लोग अभी देते ही हैं तो एंड में क्यों देते हैं, जब ठंड लग रही तब देंगे ना, पहले आते ही दे देंगे उनको। तो बहुत लोग ना अपना बिस्तर में उसको घुमा के ले गए उसको, तो एंड में जब भी बांटने का समय आया तो हमारे पास 66 ब्लैंकेट कम पड़ी। तभी एंड मौके पे कहाँ खरीदी करेंगे उसको, तो हम लोग इनके पास आए। हाँ महाराज जी बेटी, तो एंड मौके पे कहा इनके घर पे आए, बोले महाराला जी हमको ब्लैंकेट चाहिए, तो उन्होंने कितने चाहिए वो सब गोदाम खोल के दे दिए हमको, हमने तुरंत उसको बांट दिए। फिर मैं आया और मैंने उनका जो हिसाब किताब करके दे दिया, तो लाला जी इतना गुस्सा हुआ, बोले जाओ आज से हमारा कोई प्रेम नहीं, कोई संबंध नहीं, मत आओ हमारे पास, तुम हमको पैसे देते हो, अगर हमको अपने परिवार का सदस्य समझते हो तो पैसे क्यों देते हो, परिवार के लोगों को पैसे देते हो। मैं तो दंग रह गया सुन के सब, मेरे का मेरा ड्यूटी है, मैंने इमरजेंसी में आके सेवा लिया उनसे, तो मुझे उतना तो देना चाहिए उनको ब्लैंकेट। ब्लैंकेट ला के दिए तो बहुत गुस्सा किया उन्होंने, मुझे हमारा नाम निकाल दो, तो हमारा एक थ्रू से नियम है बरसाना आई कैम्प जो है ना, वो उसमें नीचे लिखा है सौजन्य से भक्ति विदांत अस्पताल और राधा रस मंदिर बरसाना, बोले हमारा नाम निकाल दो। क्यों लिखते हो, को स्पॉन्सर्ड बाय, निकाल दो हमारा नाम। फिर एक कैंप में हमारा जनरेटर खराब हो गया, अभी जनरेटर किसके घर में 4-5 होते क्या, एक ही होता है ना, कोई रखता नहीं दो 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 तीन तीन जनरेटर। तो जनरेटर हमारा खत्म हो गया, बोले हमारा ले जाओ, बोले आपके लिए कोई बात नहीं है, आप इतनी सेवा कर रहे हो कोई बात नहीं, और ट्रैक्टर में डाल के भेज दिया, बोले चलाओ इसको जब तक वो रिपेयर नहीं होता है, सेवा बंद नहीं होनी चाहिए। और हमेशा खड़े रहते थे वहां पर आके, कोई भी कुछ तकलीफ हो रही है, कुछ कष्ट हो रहा है, कुछ कमी है रह रही है, कुछ सामान नहीं है, कुछ नहीं है, तो तत्पर रहते थे एकदम, जैसे अपने घर का शादी का होता ना उत्सव, इस तरह से काम करते थे। इतना प्रेम दिया उस परिवार ने, और वो बड़ा अद्भुत परिवार है, उसको हम लोग कभी भी उस पर तुलना नहीं कर सकते कि हम कभी बन सकते हैं ऐसे, खाली देख सकते हैं, बस देखिए दंडवत कीजिए उनका आशीर्वाद लीजिए, बस जाते रहिए देखते रहिए। फिर उनके घर में जो भागवत प्रसाद, तो पहले कैंप जब हुआ था तो उन्होंने बाबा ने बहुत मतलब आशीर्वाद दिया था, बाबा जी पहले कैंप में उद्घाटन करने के लिए आए थे, अभी तो इतने वृद्ध हो गए वो, उस समय कम से कम 25 साल जवान थे, मतलब कम थी उम्र। तो ऐसा तूफान नृत्य किया था उन्होंने PHC में, पीछे हमने यज्ञ किया था वहाँ पर पहले, इतना तूफानी नृत्य किया था कि हमको लगा अभी क्या होगा, क्या हो जाएगा अभी पता नहीं, इतना गोल जोर से घूम रहे थे और धड़ाड़ करके नीचे गिर गए अपने आप जानबूझ के, कई समय तक नीचे ही रहे ऐसे दंडवत रूप में। तुमको लगा क्या हो रहा है, बेहोश होकर गिर गए कि क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो अद्भुत नृत्य देखकर हम लोग दंग रह गए थे। तो बाबा जी ने आशीर्वाद दिया था कि आप लोग का भाव बड़ा अच्छा है, तो सेवा करो अच्छी तरह से, और उन्होंने एक मंत्र दिया था हमको, थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा सा कम करो, ये मंत्र दिया था कि बिना हरिनाम के कोई सेवा नहीं करनी चाहिए, इसलिए हमारे कैंप में वो 12 घंटे का कीर्तन होता है। पहले कैंप में 24 घंटा कीर्तन किया हम 15 दिन तक, इतने ठंड में 3-4 ब्रह्मचारी मंदिर से आए थे और 24 आवर्स कीर्तन करते थे, और बीच में मूड आता था उनको, तो वो उठते थे और पूरा वार्ड में मरीज के पीछे घूम के, पूरा ओटी वोटी में घूम के वापस आकर बैठते थे। कभी भी 3 बजे एक बार, कभी दोपहर को 3 बजे, कभी दोपहर को, दिन में कभी भी मूड आया तो निकलते थे, लेकिन 24/7 कीर्तन करते थे, इतना बढ़िया। तो उन्होंने ये हमको बताया था कि जो भी करना है हरि नाम के साथ में होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 कहा था कि जो भी आप 10 करो, 15 करो, 20 करो, 25 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी है क्वालिटी होना चाहिए। उन्होंने ये कहा था, ये उनकी बात है, कि आप अगर राधा कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हो तो इन लोगों के बीच में राधा कृष्ण देखो, राधा कृष्ण इनके रूप में आपके पास आ रहे हैं, जब भी आपकी सेवा पाकर संतुष्ट होंगे और स्मित हास्य करेंगे तो राधा कृष्ण ही आपको देखकर हंस रहे हैं। ये बात उन्होंने बताई थी, हमने लिखी रखी है, हमारी स्लाइड शो में भी है। और कहा था कि जिस दिन आप यहाँ के ब्रजवासियों की सेवा करके उनको संतुष्ट करते हो, उसी दिन राधा रानी आपके नाम की सिफारिश कृष्ण को कर देती, ये बात उन्होंने बताई थी। तो ये हमारी जो कैब की जो नींव है, नींव वो इस परिवार के सपोर्ट की वजह से है। आज भी हम लोग अभी इतना सपोर्ट लेते नहीं उनसे, अपना अपना सपोर्ट हो गया है, लेकिन वो हमेशा ऑन कॉल रहते हैं, अलर्ट, जब चाहे आ जाओ, बताओ क्या तकलीफ है, हम उसको कर देंगे। तो ऐसे परिवार में हम अभी शाम को जा रहे हैं आज, तो आप उनके घर में जाकर उसका जो क्या कहते हैं ना वाइब्रेशन, उसको लेना जरा, हाँ, और प्रार्थना करना भगवान से कि हमको भी ऐसे एक बार सद्बुद्धि दें, इतनी क्या कहते हैं दातृत्व, यानी चैरिटेबल जनरोसिटी जो होती है ना, उसके लिए प्रार्थना करना, क्योंकि ये लोग बड़े अद्भुत लोग हैं, इनका चेतना जो है ना उसके हम तुलना नहीं कर सकते हैं, इतने विरक्त हैं। अभी इनकी जो लड़कियां हैं जो भागवताचार्य हैं, वो भी कुमारिका हैं, उनको विवाह वा नहीं करना है, इनको इंटरेस्ट ही नहीं इस चीज़ में, उनका दिन रात जो है बाबा के चरणों में पड़े रहते हैं, भागवत पढ़ते रहते हैं, और छोटी छोटी बच्चियाँ भी यहाँ वहाँ अभी सब जगह जाके भागवत करती हैं, उनकी कथा में बहुत भीड़ होती है। अब बहुत सुंदर भागवत करते हैं, क्या सुंदर क्यों होता है, उसमें कोई लालसा नहीं होती है कि हमें कोई मिलेगा, वस्त्र मिलेगा, पैसा मिलेगा, कोई ऐसा कोई लालसा नहीं है, एकदम निरपेक्ष भाव से। एक बार तो ऐसा हुआ था कि 1990 में उन्होंने ब्रज परिक्रमा शुरू की थी, ब्रज परिक्रमा 84 लक्ष की, 84 कोसी, 84 कोस की। तो पहली बार जब निकले थे तो कुछ 500 लोग थे, 200-300 लोग थे, फिर धीरे धीरे बढ़कर भी 2,000 हो गए, ऐसे करके 15,000 होते हैं। तो एक में अभी इतने लोग हो गए ना, 15,000 लोग, उसके लिए भी किसी से पैसा नहीं मांगते वो, कि भाई कॉन्ट्रीब्यूशन दो, यात्रा का कॉन्ट्रीब्यूशन इतना है वगैरह वगैरह, जैसा हम करते हैं। बोले सेवा जब होती है तो उसका पैसा लेना नहीं चाहिए। अरे क्रांतिकारी विचार है, बहुत ही इट्स वेरी यू नो रेवोल्यूशनरी थाट्स, यू कैन नॉट जस्ट प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड इट। तो अभी इतने लोग बढ़ गए तो उनको सबको भोजन देना है, सबको टेंट लगाना है बड़ा बड़ा, और सब जगह लगाना है, 2 टेंट होना चाहिए, एक टेंट मोशन में रहेगा, अगली जगह लागे लगाएंगे, एक जगह एक टेंट लगा हुआ है, जब यहाँ से निकलेंगे तो वो डिसमेंटल करके उसको अगली जगह में लगाना है, और ये लोग सेकेंड जगह में रहेंगे, इतना बड़ा 40 डेज तक करना है, कभी तूफान बारिश खेत में करना है, 4-5 एकड़ की जगह चाहिए हर जगह पर, किसका खेत कटा हुआ है वो देखना है, उसमें लगाना है टेंट, काफ़ी काम होता है। तो एक एक यात्रा में ऐसा हो गया कि कुछ धन ही नहीं है, तो यात्रा कैंसिल हो गई। तो मुरलीका ने कहा कि मेरी अमेरिका की जो भागवत कथा हुई थी उसका मेरे पास कुछ सेविंग है, तो 65 लाख रुपये उसके पास में थे, उसने पूरे दे दी है बाबा को, बोलो यात्रा बंद नहीं होनी चाहिए। एक लड़की के एक भागवत कथा के आधार पर जो उसने जो भी उनको दान मिला था, वो 1 रुपया भी न रखते हुए सारा लगा दिया उसने, और हर साल अभी लगाते, मैं दंग रह गया था। आई वॉज उस समय 65 लाख इज हाउ मच, 10,000 और आई डोंट नो, 1,100,000 डॉलर्स, 1 लाख डॉलर्स उसके पास थे, दे दिया उसने। पूरी यात्रा एक लड़की के, एक छोटी सी लड़की के आधार पर चली, कितनी गर्व की बात है। तो ऐसा निरपेक्ष भाव जो है ना वो दुनिया में कम मिलता है। हर हम आदमी साधु भी होता है ना आजकल, वो कुछ ना कुछ रखता है, अपेक्षा रखता है, दक्षिणा की अपेक्षा रखता है, रोटी की रखता है, या सम्मान की रखता है, या कुछ भी कुछ उसके मन में सूक्ष्म या स्थूल हेतु रहता है हमेशा। लेकिन इतना निरपेक्षता जो है वो बाबा के संग में रहकर उन्होंने प्राप्त किया है, और वो हर चीज़ में निरपेक्षता है, आप आओ जाओ कोई अपेक्षा ही नहीं है आपके पास से, अब आ जाओ, खाओ, डोनेशन दो मत दो, लेकिन आते रहो, जाते रहो, भजन करते रहो। इतना प्रेम जो है ना, इतना विशाल हृदय प्रेम जो है वो हमको सीखना चाहिए इनसे आके। तो ये हुआ रस मंदिर का इतिहास। और रस मंदिर ने जितने मान मंदिर में साधु थे उनको भी अपना ही बना लिया। आज से नहीं, कई सालों से उनके घर में सब लोग भोजन करते हैं, मधुकरी बोलते हैं उसको, आराम से रहते हैं। और जब चाहे आओ रहो, कोई पूछेगा नहीं आपको, रहो आराम से, प्रसाद पाओ, भजन करो, सत्संग करो, चले जाओ। अभी हम इस जगह के इतिहास पे आते हैं। 92 में हम लोग ऐसे घूमते घूमते यहाँ पर आए थे। 92 में नहीं आए थे, 91 में आए थे। तभी हमारे गुरुदेव ने एक फोटोग्राफी यात्रा निकाली थी। उनको सब ब्रज का फोटो निकालना था, स्लाइड्स और फोटो। तो केवल हमारे जो डॉक्टर्स हैं ना, अभी माधवानंद प्रभु, मैं, वैष्णव सेवा प्रभु, गिरिराज प्रभु, और आप भी थे क्या उसमें? नहीं ना, आप उसके बाद में आए शायद। तो हम लोग केवल ऐसे ही 10-11 लोग थे, और दो पुरानी मारुति वैन हमारे पास थी, वो हायर की थी हमने। वो लेकर हम लोग 7 दिन में 60 जगह पर गए, 60 places, सब जगह फोटोग्राफी की हमने। तो वो करते करते हम बरसाने में भी आए थे। तो उस समय हम लोग मुंबई में कैंप लगाते थे, 25 patients का ऑपरेशन करते थे, और कभी सब प्रकार के मरीजों को देखते थे, मल्टी डायग्नोस्टिक कैंप करते थे। तो हम लोग को 25 patient का ऑपरेशन करने का अनुभव था, उस कैंप को ऑर्गेनाइज करने का। पालघर में करते थे हम लोग, पालघर के सामाजिक अस्पताल में करते थे, प्राथमिक आरोग्य केंद्र होता है ना, PHC होता है ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसमें करते थे। तो वो सारी टीम जो थी वो आई थी हमारे इसमें यात्रा में। तो वो पूछते थे आप लोग क्या करते हो, हमने कहा हम इस कैंप करते हैं, सेवा करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर भी कैंप करो ना, यहाँ पर भी बहुत मोतियाबिंद के लोग हैं, बहुत अंधे होते हैं वगैरह वगैरह, ऐसी बातों बातों में खाते पीते ऐसी बातें हो गई। तो गुरु महाराज ने कहा करो, अच्छा है, हो सके तो करो। तो मुंबई गया और तुरंत योजना बनाई और हम लोग आ गए कैंप करने के लिए। तो उन्होंने फिर सोचा कि इन सब लोगों को सत्कार करना चाहिए। तो सब लोगों के लिए उन्होंने पहले कैंप से ही भागवत प्रसादी वस्त्र देने का नियम शुरू किया। वो आज भी फॉलो करते हैं। उस समय तो 100 के भी कम लोग आते थे, अभी तो हमारे पास भी 400 लोग आते हैं। तो वो भागवत जब करते हैं ना, तो भागवत के इसमें बहुत सारे वस्त्र वो दान करते हैं, धोती, कुर्ता, साड़ी, दुपट्टे, शॉल वगैरह वगैरह, बच्चों के, और मुरलियाँ, मुरली बजाने वाली, खिलौने, वो सब ऐसे। क्योंकि भागवत में होता है नंदोत्सव, नंदोत्सव होता है, नंदोत्सव में फिर वो खिलौने फेंकते हैं और क्या क्या बच्चों के खिलौने देते हैं उसमें। तो सारे वो प्रसाद करके इकट्ठा होते हैं और किसी को देते रहते हैं वो। तो आज भी वो जमा करके रखते हैं साल भर के, कि आएंगे कैंप वाले लोग, उनको देना है, जो इतने दूर से आते हैं हमारे ब्रजवासियों की सेवा करते हैं, सत्कार करना चाहिए उनका, इस भाव से करते हैं। तो एनीवे, तो 92 में जब ये हुआ तो कई साल कैंप किया अलग अलग जगह पे, कभी यहाँ ऑपरेशन किया, वहाँ ऑपरेशन किया, कभी उधर किया, कभी इधर किया। तो उसके बाद में हमारा विचार रहा कि यहाँ पर एक जगह होनी चाहिए अपनी, क्योंकि तो कैंप की संख्या बढ़ रही है। तो सबसे पहले हम लोग साल में एक बार कैंप करते थे, 185 शुरू किया, फिर 220, फिर 280, फिर 385, फिर 480, ऐसे करते करते अभी 800-900 होते हैं। तो हर बार इतने ऑपरेशंस कहीं और जगह पे करना, उसको सेटअप करना, उसको तैयार करना, क्योंकि हर जगह हमारा इतिहास रिकॉर्ड है हमारा, जहाँ पर भी हम कैंप लगाते हैं हमारी टीम जाकर सबसे पहले वहाँ पर साफ सफाई करती है, जो साल में एक बार होती है वहाँ पर उस जगह पर। पंडरपुर में बोलो वही बात है, जहाँ कैंप करते हैं पहले हमारी टीम जाके साल भर का महा क्लीनिंग एक दिन में कर लेते हैं, और कभी क्लीनिंग होता नहीं उसका। तो ये PHC भी हम लोग आके साफ करते हैं साल में एक बार। तभी का तब का, आज का तब का, यही इतिहास है। तो फिर 2005 से वो ऐसा हुआ कि भी हर साल कैंप करते हैं, हर बार जाते वक्त बहुत लोगों को ना करके जाना पड़ता है कि आपका नहीं हो सकता, हमारा डेट खत्म हो गया, जा रहे हैं हम लोग। फिर 2007 में हमने वो जो अस्पताल है ना हमारा, वो आश्रम के लोग जो हैं वो हमारी सेवा देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ अस्पताल बनाई ना, इतना जगह ढूंढते हो नहीं मिल रही है, तो हमारे यहाँ बना दीजिए अस्पताल, हमें आपको जगह बना देते हैं। तो उन्होंने अपने खर्चे से वो जगह बनाई है राधा माधव में, जो अस्पताल है वो। और हमको जगह दिया ऑपरेशन थिएटर का, ओपीडी का, और वेटिंग एरिया दिया। तो हमने मंथली कैंप शुरू किया। 29 मार्च 2007 के दिन बाबा जी महाराज ने आके उसका उद्घाटन किया। हमने यज्ञ किया और उन्हें उद्घाटन किया उसका। बहुत जोरदार भाषण दिया उन्होंने उस समय, अभी भी याद है। खड़े होकर बैठे थे, बैठे बैठे कथा कर रहे थे, सरजी खड़े हो गए और खड़े होके, राधा रानी यहाँ की नायिका है, राधा रानी के चरणों से, उनके नुपुर की आवाज से वेदों की ध्वनि निकलती है, श्लोक के साथ बता दिया। तो वो चलती हैं तो नुपुर की आवाज जब आती है उसमें से वेद निकलते हैं, वेदों का निर्माण वहां से हुआ है, यहाँ पर रस का निर्माण होता है, यहाँ पर रस का विकास होता है, और यहीं से कृष्ण रस की प्राप्ति करते हैं, फिर ब्रज में रस बांटते हैं, यही वो भूमि है। बाकी वृंदावन में कहीं रस नहीं है, सब यहां से रस प्राप्त होता है, ऐसा उन्होंने बोला था उधर। तो हमारे राधा वल्लभ जी के हमारे मित्र गोस्वामी हैं, वो भी सब परिवार पूरा आया था, उनकी सेवा नहीं थी मंदिर में, तो वो आ गए थे, तो वो भी ऐसे एकदम प्रफुल्लित हो गए थे एकदम भाषण देखकर, वाह क्या बात है। तो वो 29 मार्च 2007 को हमने मंथली कैंप शुरू किए, साल के कैंप के साथ साथ 10 मंथली कैंप और 1 एनुअल कैंप। फिर मंथली कैंप में भी वेटिंग पीरियड, बोले वो 100-100 ऑपरेशन के बाद भी वेटिंग वेटिंग वेटिंग। तो फिर हमने कहा अभी यहाँ पर इतनी ज़रूरत है, लोगों की इतनी श्रद्धा है, और लोग हमारे पास आ रहे हैं, साल भर वेट करते हैं। तो फिर हमने 2011 में 6 अक्टूबर 2011 को हमारे गौरांग सुंदर बाबू, उनकी पत्नी और उनके द्वारा प्रेरित जो हमारे कुछ आई कैंप के आई डिपार्टमेंट के लोग, वो उन्हें शिफ्ट होने का तय किया, हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर। तो 6 अक्टूबर को 2011 को वो शिफ्ट हो गए, तो मंथली कैंप बंद हो गए और डेली सेवा चालू हो गई, और एनुअल कैंप चलता रहा। और हमने 2005 से यहाँ पर एक एक चप्पा चप्पा छान मारा है हमारी जगह के लिए, लेकिन हो ही नहीं कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। नंदगांव तक हम चले गए, गोवर्धन में भी देखा, यहाँ पर भी देखा, सब जगह पर देखा, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था हमारा काम। एक जगह तो हम लोग ने तय करके पैसा लेके कोर्ट में गए और उसमें एग्रीमेंट भी करने वाले थे, लेकिन ऐसी अजीब अद्भुत बात हो गई कि जो जो मालिक थे जमीन के, बड़े बुजुर्ग थे वो बेचारे, विचवासी थे, तो सब एग्री हो गया हमारा, सब रेट वेट एग्री हो गया, सब हम लोग वकील किए, हम बम्बई से आए, वो लोग आए, छाता को कचहरी में गए, वह पेपर बन गए, सब खाली साइन करना बाकी था। तो ये प्रभु जी हमारे ब्रजवासी रास्ता पे बैठ के रोने लगे कि नहीं नहीं मैं जमीन नहीं बेचूंगा, मैं नहीं बेचूंगा, नहीं नहीं जमीन नहीं बेचूंगा मैं। तो उनको बोला अभी क्या करना है, व्हाट टू डू नाउ, भी सारी चीज़ फिट करके आए हम लोग। तो उनके एक मित्र थे, उनके उम्र के, उनके ज़माने के स्कूल के फ्रेंड थे, उनको जाके हम मोटरसाइकिल से लेके आए। वो भी रास्ते पे बैठ के उसको समझा रहे, वैसे बोलते ना, हम बोलते ना उकीड़ वे, मतलब वैसे पूरे नहीं बैठते, ऐसे पैर में बैठते ना मोड़ के, ऐसे बैठ के रो रहे हैं। उनके साथ ये भी बैठ गए और 2 घंटा समझाया उनको, फिर भी नहीं माने। तो उनका लड़का बोला कि प्रभु जी माफ़ी चाहते हैं, हमारे पिताजी बहुत भावुक हो गए हैं वो, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ, मैं इस ब्रज भूमि में खड़ा होकर वादा करता हूँ कि ये भूमि हमको आपको ही देनी है, और यहाँ पर ब्रजवासियों की सेवा होनी है, आज नहीं तो कल एक महीना बाद आइए आप हमको देंगे। लेकिन वो कभी हुआ नहीं, वो चाचा जी माने नहीं, और फिर वो सारा चीज़ कैंसिल हो गया। फिर और खोज शुरू हुई, और फिर उसके बाद में ये ज़मीन की प्राप्ति हुई। कब ज़मीन की प्राप्ति हुई, जैसे ही बम्बई से कुछ लोग अपना बम्बई का जीवन, बम्बई की आमदनी, बम्बई का जो क्या कहते हैं उसको, फैसिलिटी सुविधा सब छोड़ के जब यहाँ पर त्याग रूप में बस गए, अगले 15 दिन में ये हमारी ज़मीन हो गई। तो भगवान देंगे, आप कितना त्याग करने को तैयार हो बताओ, पहले सारी सुविधा देंगे आपको, लेकिन भोग के लिए नहीं देंगे, सेवा के लिए देंगे। जैसे ही ये त्याग की एक्टिविटी हुई, तुरंत 4 बीघा जमीन हो गई हमारे राधेश्याम जी, पड़ोस के जमीन मालिक हैं, उनकी जमीन थी ये, उन्होंने दिया। उसके 2 महीने बाद में और 3 बीघा जमीन हो गई, उसके 1 महीना बाद में और 1 बीघा जमीन हो गई, ऐसे करके 8 बीघा जमीन हो गई, कम से कम उसको कहते हैं 4.8 acres, ये हमारी जगह है। फिर उधर एक रास्ता निकालना जरूरी था, तो और एक जमीन, चौथी जमीन ले ली गई, 14 फुट बाय 30 फुट, केवल रास्ता वहाँ रोड को जोड़ दिया है, एक यहाँ पर एंट्री है और ये वहाँ पर एंट्री है। और देखिए कितनी अद्भुत जगह है। अद्भुत क्यों है, क्योंकि यही ऐसी जगह है, इसमें आप किसी भी कोने में जाइए, किसी भी स्क्वायर इंच में खड़े रहिए, आपको चारों मंदिरों का दर्शन होगा। किधर भी जाइए, वहां जाइए, इधर जाइए, इधर जाइए, एक कोने में जाइए, उधर जाइए, हर जगह पे आपको चारों मंदिरों का दर्शन होगा। ये ब्रह्माचल है जिसके चार शीश हैं, उधर भानुगढ़ है, ये जो पत्थर का मंदिर बना ना पीला रंग का, वो दानगढ़ है, फिर उसके अंदर छोटी सी एक सफ़ेद रंग की बिल्डिंग लिखती है वो विलासगढ़ है, वो मोरकुटी है, और लास्ट में उधर मयूर ये मान मंदिर है। ये चारों ब्रह्मा जी के शीश हैं जो एक साथ यहाँ पर दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर एक अद्भुत वाइब्रेशन है। आपको यहाँ लाने का प्रयास हमने किया, इसलिए थोड़ा कष्ट हुआ आपको चलने के लिए, लेकिन आपको याद रहेगा ये जगह, क्योंकि अगली बार जब आएंगे ना तो आपको ये जगह ऐसी नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ ही महीने में यहाँ पर काम शुरू होने वाला है। तो आप लोगों को मैं ये अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो बाह्य विस्तार है, जगह आ गई, अस्पताल बनेगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, वो तो होते रहेगा। जैसे कि अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो आपकी एक दिन शादी हो जाएगी, फिर शादी के बाद बच्चे हो जाएंगे, बच्चे उनका तो स्कूल जाएंगे, फिर बड़े होंगे, फिर उनका भी शादी हो जाएगा, ये तब तो प्रपंच कहते हैं उसको, वो तो होते रहता है अपने आप ही, ज़्यादा कुछ हाथ पाँव हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मेहनत थोड़ा करते हैं, लेकिन वो जो कर्म में लिखा है वो होते रहता है। लेकिन भगवान की सेवा में जो भी होता है ना, वो करना पड़ता है उसके लिए, प्रयास करना पड़ता है उसके लिए, अपने आप नहीं होता है। साधु लोग कहते हैं कि प्रपंच जो होता है ना वो अपने आप होता है, परमार्थ और अध्यात्म जो है ना वो करना पड़ता है, वो अपने आप नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, योजना बनानी पड़ती है, शक्ति खर्च करनी पड़ती है, तब कुछ ठाकुर जी उसका रिजल्ट देते हैं। तो हमको आपको अपील ये है कि ये बरसाना आई कैंप का जो भाव है ना, सब लोग सुन रहे हैं क्या पीछे, ये बरसाने आई कैंप का जो भाव है ना, इसका एक भाव ये है कि इसमें ब्रजवासियों की सेवा हमको करनी है। और सेवा भी कैसा है, नंबर के लिए नहीं करने की, कितना हो गया, 500 हो गया, 1000 हो गया, 1500 हो गया, इसके लिए हमको नहीं करना है। उसमें एक का भी करोगे तो क्वालिटी से होना चाहिए। गुरुदेव ने 92 में हमको एक गाइडलाइन दिया था कि हर एक आने वाला व्यक्ति आपकी माँ और आपके पिता होते तो कैसे आप उनको देखते, वैसे आपको देखना है उनको। एवरीबडी इज़ योर मदर एंड फादर, इस भाव से आपको उनको देखना है। इन्होंने कहा था कि राधा कृष्ण आपकी सेवा में आ रहे हैं, उनको सेवा देना है, ये इन्होंने कहा था, उन्होंने माता पिता का कहा था। और उसमें कोई कमी नहीं छोड़नी है, लास्ट तक चश्मा देने तक आपको करना है, पूरा काम कंप्लीट करना है। उसके बाद में भी कुछ हो गया, चश्मा टूट गया, कुछ नंबर बदल गया, तो वो भी करना है। ऐसे कंप्लीट सेवा करनी है, कोई किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है। तो ये जो मूड है इसमें गुरु महाराज का बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो हमारी ऐसी इच्छा है कि 100 साल के बाद, समझो पता नहीं हम में से कोई जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन 100 साल के बाद में भी यही भाव बना रहना चाहिए, यही हमारा आपको सब लोग को अपील है। उस 100 साल के बाद में ये कैसे बना रहेगा, अगर आप उसको अपना कर आपकी अगली पीढ़ी को देंगे तो फिर वो उसकी अगली पीढ़ी को देंगे, फिर वो उसकी अगली पीढ़ी को देंगे, फिर 100 साल के बाद में ना आप रहेंगे, आपकी अगली पीढ़ी रहेगी, कोई अलग ही लोग रहेंगे, लेकिन वो उसी लेगेसी को, धरोहर को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी 5 एकड़ है, पता नहीं आगे 50 एकड़ हो जाएगी, वी डोंट नो, या 5 एकड़ रहेगी, वो श्री जी की इच्छा है, जो देखा जाएगा उसको। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सब लोगों को आज ये निश्चय करना है, इस भूमि पर बैठ कर, राधा रानी की भूमि पर बैठ कर, उनके सामने बैठ कर, आपको मन में निश्चय करना है, अपने अपने मन में, कि हम लोग उस भाव को बनाए रखेंगे। कल मैंने बहुत कड़ी बात बताई कथा में कि जिन लोगों को बाल छोड़कर वो फैशन वाले कपड़े पहनकर घूमना है, मत आओ हमारे कैंप में, तो आपको बहुत बुरा लगा होगा उसका, लेकिन उसके पीछे कारण है, क्योंकि जो होता है ना वो भाव में पतन या भाव का स्खलन या भाव का नाश ऐसे धीरे धीरे होता है, अचानक नहीं होता है कि इस कैंप में सब लोग अच्छे आए, अगले कैंप में सब लोग ऐसे फैंसी ड्रेस में आएंगे, ऐसा नहीं होता है, वो धीरे 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 ही होता है। और उसको धीरे धीरे तभी आपको, जो खेत किसान लोग क्या करते हैं, जब फसल आती है तो साथ में एक ऐसे वीड भी आता है, वीड यानी विषवल्ली कहते हैं उसको, तो नहीं होना चाहिए, वो आते ही उधर, तो उसको तुरंत ही काट देते, वो दुर्लक्ष कर देना तो वो खुद तो बढ़ता ही है और सारे खेत को भी नष्ट कर देता है। होता है ना ऐसे, जो गलत प्रकार का कुछ आता है उसके अंदर ना, तो सारा खेत का जो खाद वाद पानी वानी खींच लेता है वो, और अपने खेत की फसल को खत्म कर देता है वो। तो वैसे कहते हैं विषवल्ली को उसके अंकुर के स्टेज में ही निकाल देना चाहिए। तो हमारा काम क्या है उसके अंदर, हमारा काम यह है कि जो जो छोटा छोटा डाइल्यूशन डाइवर्जन डेविएशन दिखाई पड़ता है ना, उसको तुरंत काट देना चाहिए। क्योंकि वो आज अगर नहीं ध्यान दिया, चलो ठीक है यार, कोई पहली बार आए ऐसे करके, फिर अगली बार भी वैसे आएंगे और 10 लोगों को और लेके आएंगे और वैसे ही रहेंगे। तो फिर आज जो हमको कष्ट हो रहा है उसको मिटाने में अगली बार 10 गुना कष्ट करना पड़ेगा और 10 लोगों को 10 गुना लोगों को दुखाना पड़ेगा। तो शुरू में थोड़ा दुखाएंगे तो ठीक है, लेकिन अपना जो डेकोर है ना, वो अपना जो मेहनत करके इतने सालों से बना के रखा है, एक कैंप का भाव है हमारा, एक कैंप का वातावरण है, इस कैंप का एक ब्रीद है, एक कैंप का एक कॉन्शियसनेस है, उसी को वही लेके वही कॉन्शियसनेस आगे कैंप को बढ़ाने वाला है। वही हमारा नीटिंग है, वही हमारा स्थायी भाव है और वही आगे चलने वाला है। बाकी इस बार 50 किए, माइक्रोस्कोप लाया कि और फेको किया कि SICS किया, वो सब टेक्निकल बातें हैं, लेकिन कैंप की जो बुनियाद है हमारा वो कॉन्शियसनेस है। जो गुरु के द्वारा दी गई आज्ञाएं हैं, बाबा के द्वारा दी गई आज्ञाएं हैं, वो हमारी बुनियाद है, वो सैकड़ों साल चलने वाली है और उसको बनाए रखना हमारा काम है। आज कुछ लोग आएंगे, कल कुछ लोग आएंगे, कल नए लोग आएंगे, कल फिर कुछ और देश से आएंगे, फिर पहले वाले नहीं आएंगे, शायद बहुत सारी चीज़ें बदली हो सकती है, लेकिन बुनियाद नहीं बदलनी चाहिए। ये जो जो हमने बनाया है उसका फॉर्मेट, वो आध्यात्मिक फॉर्मेट है, इट्स नॉट अ मटेरियल फॉर्मेट। आध्यात्मिक फॉर्मेट पर मटेरियल फॉर्मेट आधारित है कि हमको कौन सा ऑपरेशन करना है, किस प्रकार से करना है। हमारे कैंप में आपको बताता हूँ कि जब डोनर दानी लोग आते हैं ना, तो पूछते क्या कितना खर्चा करते हैं आप लोग, मैं कितने कैंप में दान देता हूँ, वो 400-500-600 में क्या ऑपरेशन करते हैं, आप 1500 क्यों मांगते हो। तो हमने उनको बताया कि ये चीज़ हम करते हैं, तो बॉम्बे के प्राइवेट अस्पताल में प्राइवेट मरीज के लिए भी हम लोग जो करते हैं ना, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर करते हैं। और इस सब समझाने के बाद मैं उनको कहा, इसके बाद सुनने के बाद में आपको देना है तो दो, नहीं तो मत दो, कोई बात नहीं, राधा रानी कुछ ना कुछ करेगी। तुरंत 5 लाख का डोनेशन दे दिया। तो आपको विश्वास होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, विश्वास के साथ करना चाहिए कि यस हम लोग ये कर रहे हैं। हम लोग हर कपड़ा बदली करते हैं, हर चीज़ नई मरीज को नई लगा देते हैं, कोई कमी छोड़ते नहीं जो हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में बम्बई में पैसा देकर करते हैं, लेकर करते हैं, वो चीज़ यहाँ पर फ्री में करते हैं, लेकिन फ्री में इसलिए कम नहीं करते हैं, जो भी बम्बई में प्राइवेट में होता है वही इसमें फ्री में भी होता है, इसलिए खर्चे ज़्यादा होते हैं। और यही प्रमाण रखा है, पहले से स्टैंडर्ड रखा है, आज तक वही रखा है, जब भी 200 करते थे ये स्टैंडर्ड था, आज 1000 होता है तो भी ये स्टैंडर्ड है, और इसी से हम आगे चलेंगे। तो इसको कहते हैं बुनियाद, ये बुनियाद है, उसके ऊपर बिल्डिंग कितनी बड़ी बनेगी वो अलग बात है। तो आप लोगों को विनती है, आप लोग हमारे कैंप में आते हो तो इस फॉर्मेट को, इस डेकोर को, इस सिस्टम को आप स्वीकार कीजिए, उसको बनाए रखिए, ताकि हम बुढ़े हो जाएंगे डंडा लेकर यहाँ पर आएंगे 80 साल की उम्र में भी यही दिखना चाहिए जो पहले स्थापित हुआ था। ऐसा नहीं होने, क्या था और क्या हो गया, सोचा था क्या, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो था वही है, ऐसा होना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि मैं जब बच्ची थी तब यहाँ पर आई थी, मैं जब बच्चा था तो यहाँ पर आया था, और आज मैं इतनी उम्र में आया तो भी आज देख रहा हूँ कि वही भाव से लोग काम कर रहे हैं। तो ये भाव को ट्रांसफर करना है ना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, ये बहुत कठिन बात है। बाकी 1 लाख इकट्ठा कर रहे थे तो 15 लाख कर रहे हैं, ये होते रहेगा, वो एक्सपांशन अपने आप होगा, लेकिन भाव का एक्सपांशन आपको करना है। भाव का विकास जीव करता है, आत्मा करता है, बाकी विकास प्रकृति कर देती है, लेकिन भाव का विकास जो है वो हम लोग करते हैं, हमको करना चाहिए। इसलिए आप लोगों को विनती है कि इस भूमि के लिए आप लोग सब लोग प्रार्थना करो। हाँ, अभी आप लोग क्या करो, एक बार अबाउट टर्न हो जाओ सब लोग श्री जी की ओर, सब लोग श्री जी की ओर मुंह करो, पहाड़ों की ओर मुंह करो, और हमारे इस भूमि पर जो हमको सेवा करनी है उसके लिए आप प्रार्थना करो। क्योंकि हम तो प्रार्थना करते ही हैं, तो अकेले हैं, लेकिन जब आप सब मिलकर प्रार्थना करेंगे तो श्री जी बड़ी दया करेगी, क्योंकि वो हृदय को प्रतिसाद देने वाली देवी हैं, हाँ, ब्रज देवी कहते हैं उनको। और वो जब प्रामाणिक भक्त आप जैसे लोग बड़े दिल से और आत्मा से उनको पुकारते हैं और उनकी सेवा में कुछ प्रार्थना करते हैं तो वो जरूर सुनेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। इसलिए हम अपने स्वार्थ के लिए आपको इस भूमि पर लेके आए हैं कि आप लोग सब लोग हमारे लिए प्रार्थना करेंगे कि इसमें एक बढ़िया अस्पताल तैयार होगा और हजारों लाखों करोड़ों ब्रजवासियों की सेवा होगी, निःशुल्क रूप में होगी, कोई स्वार्थ नहीं होगा उसके अंदर और भक्ति भाव बढ़ेगा। यहाँ पर लोग आकर रहेंगे और लिहाज रहकर जीवन समर्पित करेंगे और इसी दिव्य दृष्टि यज्ञ को सब लोग आगे सफल करते रहेंगे आप लोगों की प्रार्थना की वजह से। सब लोग प्रार्थना कीजिए श्री जी को कि ये अस्पताल जल्दी से जल्दी बने और ब्रजवासियों की सेवा में लोकार्पण उसका बहुत जल्दी हो, क्योंकि हर अच्छी सेवा करने में कष्ट होता है, बाधाएं आती है, पीड़ाएं आती है, कष्ट होता है, तो वो सब झेलने का सामर्थ्य इन सेवायतों में आ जाए और फिर भी अपना ब्रीद वो न छोड़े, कष्ट आने पर भी लगे रहें और श्री जी आप कृपा बनाए रखें ताकि ब्रजवासियों की सेवा में हम कुछ ठोस कार्यक्रम कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव यहाँ पर 6 महीना रुके हैं मान मंदिर में और जीवन के आध्यात्मिक जीवन के अद्भुत अनुभूतियाँ उन्होंने यहीं पर प्राप्त की है। उनके भी भक्ति जीवन की जो बुनियाद है वो मान मंदिर से बनी हुई है। तब से उनके मन में ये इच्छा थी कि बरसाने में भी एक ठोस कार्यक्रम ब्रजवासियों की सेवा में होना चाहिए। जब उन्होंने उस कश्मीर वाले पाकिस्तान वाले बॉर्डर में उस सिख अफसर को वादा किया था कि आपके देश में हम अच्छा काम करना चाहते हैं, वो तो जनरल बात थी, उसमें भी उनकी एक अंदर की बात उन्होंने यहाँ पर बताई थी कि उनको बरसाने में भी कुछ ठोस कार्यक्रम करना है। तो ये गुरुदेव की भी इच्छा है कि बरसाने में चिक्सोली में बढ़िया अस्पताल, बढ़िया सेवा होनी चाहिए। यहाँ पर शुरुआत में आँखों का अस्पताल होगा और जब वो स्थिर हो जाएगा तो उसके बाद में मैटरनिटी और पीडियाट्रिक डिलीवरी, बच्चों का देखभाल भी करने का हमारा विचार है। तो आगे बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, हम रहेंगे आप रहेंगे तो सब आपको इस जीवन में दिखाई पड़ेगा। तो अभी हम आपको समय देते हैं, आप कुछ समय के लिए श्रीमती राधा रानी को इस अस्पताल के लिए प्रार्थना कीजिए। हरे कृष्णा।